ڈسکس کریں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. شروع کرتے ہیں ہم لوگ, پیج نمبر 236 سے شروع کرنا ہے. آپ لوگ کھول کے رکھیے اپنی بکس کو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. مصیبتوں سے کیسے نپٹیں, اس میں الحمدللہ ہم لوگ مصیبتوں کے آنے کے اسباب دیکھ چکے, مصیبتوں کے آنے سے پہلے کے کام دیکھ چکے, جس میں ہم نے 10 چیزیں دیکھی تھی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب مصیبت آئیں تو کیا کریں. اس میں ٹوٹل 18 پوائنٹ ہیں, جس میں سے 4 ہم کر چکے ہیں. ذرا دہرائیں گے آپ سب مل کے, مصیبت آ جائے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, بولیے. شکر کرنا ہے کہ مصیبت آئی. لوگ تو آپ سے ناراض ہو جائیں گے, ہیں جی. اللہ کا شکر کرنا ہے کہ چھوٹی آئی جی. اور اس کے اندر کہ آپ لوگ پیچھے سے دیکھ کے نہیں آئے آج جی. مصیبتیں آئیں گی, سب سے پہلا کام نوٹ کر لیں جو لوگ کل نہیں تھے یا آج ذہن نہیں بنا کر آئے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مصیبت کے آنے کے بعد ہمیں جو کرنی ہے وہ یہ یقین رکھیے کہ مصیبت تو آئے گی. جیسے کہ گاڑیاں چلتی ہیں تو راستے میں دوسری گاڑیاں آتی ہیں. دوسرا پوائنٹ کیا دیکھا ہم نے کہ ہر چیز اللہ کی طرف لوٹ جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کی طرف پلٹنے کی بات. تیسری چیز ہے کہ مصیبت صرف اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے, لہٰذا آپ کو مجھے اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے مانے. دیکھیں نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے حکم سے پڑھتے ہیں نا, روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے حکم سے رکھتے ہیں, اجر کی امید پہ رکھتے ہیں نا کہ اللہ کا حکم ہے. تو مصیبت بھی ایسے ہی ایک حکم ہے, خوشی سے کریں. کیا نماز روتے دھوتے پڑھتے ہیں؟ کیا روزہ رکھ کے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں نا. تو بس مصیبت آئے تو اسمائل دیا کریں کہ جیسے کہ مصیبت آئی ہی نہیں. اور چوتھی چیز ہم نے پڑھی تھی, قضاء و قدر پہ راضی رہنا, کہ میری تقدیر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ لکھ دیا وہ ہو کے رہے گا, اس لیے مجھے کسی دوسرے سے جزا و فضا نہیں کرنا. آج ہم پانچواں پوائنٹ دیکھیں گے جو مصیبت کو ہلکا کرے گا. اور یاد رکھیے کہ ہم جو بھی باتیں سیکھ رہے ہیں نا, اس سے ایک تو ہمیں ثواب ہونے کی امید ہے, لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری مصیبت کا بوجھ ہم سے کم ہو جائے گا, محسوس کم ہوگی. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, کوئی چھوٹی سی چیز ہو وہ فیل بہت کرتے ہیں, ہائے گرمی ہائے گرمی, ہائے سردی ہائے سردی, ہائے میں مر گیا ہائے میں مر گیا, اس سے پھر چیز اور بڑھتی ہے. کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب ڈاکٹرز انجیکشن لگواتے ہیں تو کسی کو انجیکشن لگائیں تو کیا کہتے ہیں, جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں. ڈھیلا چھوڑیں گے تو درد کم ہوگی, اور جو لوگ ڈاکٹر انجیکشن کے دوران جسم کو اکڑا لیتے ہیں نا, ان کو درد زیادہ ہوتا ہے. بس آپ انجیکشن کو مصیبت کہہ لیں. مصیبت آئے نا, ریلیکس, ٹیک اے ڈیپ بریتھ, لمبی سانس لیں, اپنے آپ کو کول ڈاؤن کریں, بولیں یہ میرے رب کا حکم تھا, یہ میری قسمت میں تھا, یہ گفٹ مصیبت کا اللہ نے مجھے دیا ہے. آپ فیل کریں گے کہ درد ہی نہیں ہوگا. ہم بہت زیادہ سٹریچ کرتے ہیں نا جب اپنے آپ کو, اور بہت سٹریس میں آ جاتے ہیں, اس سے پھر وہ مصیبت اور بڑھتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مصیبت میں خیر ہونے کی امید انسان کو کیا دیتی ہے. اس میں قرآن پاک کی ایک آیت دلیل میں نوٹ کیجئے, 216 بقرہ, وَأَسَانْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَسَانْ تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو, اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو, اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. یاد رکھیے جو حادثات ہوتے ہیں نا, یہ غیب کے پردوں میں چھپے ہوتے ہیں. مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمیں دکھ نہیں رہی ہوتی, لیکن ان کے اندر شر ہوتا ہے. بظاہر تو قرآن پاک میں یہ آیت دو جگہ آئی ہے, ایک تو یہی آیت ہے یہاں جہاد کے تناظر میں آئی ہے, یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی سٹرگل, بھاگ دوڑ اور بھاگنا دوڑنا اکثر لوگوں کو برا لگتا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, اس میں خیر ہے. دوسرا مقام قرآن پاک کا سورت نساء آیت 19 میں, وَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَأَسَانْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اور ان بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو, پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ساری خیر لگا دیں. اور پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دیں. یہاں شوہر بیوی کے معاملات ہیں, رشتے ناتے. بعض دفعہ ہماری ایک ہی ضد ہوتی ہے, میری شادی ادھر ہی ہو. آپ کہہ رہے آسان تو ہبو شعین, کیا پتہ کل کیا ہو. कल शादी हो जाए, मुमासलत हो जाए, आपकी बड़ी खुशी के दिन हो, अचानक हादसा आए और उस मर्द की जान चली जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन हो सकता है, तो आपको शादी के 2 साल बाद बेवा होना पड़े, क्योंकि उस मर्द की उम्र उतनी लिखी हुई थी। फिर आप उसके सदमे में रो रो के ज़िंदगी गुजारते हैं कि मुझे तो शौहर पसंद बहुत है, चले गए। मुझे आपको नहीं पता, देखिए हर शादी में ये ज़रूरी नहीं होता कि घर इसलिए टूट जाए कि शौहर बीवी की बने ना, लेकिन बाज़ दफ़ा सब कुछ बन जाता है, लेकिन किसी फितरी हादसे का शिकार होते हैं, हादसे का शिकार हुए, शौहर हैंडीकैप हो गए, अब आपको सारी ज़िंदगी एक हैंडीकैप शख्स से गुजारनी पड़ी। बाज़ दफ़ा आप देखिए दिन ख़राब हो जाता है, चमकते दमकते बहुत पंपी ग्लैमरी रिश्ते होते हैं, लड़कियों का दीन चला गया, अब आपकी बेटी के हाथों में सोना चांदी जेवर डायमंड तो आ गए, लेकिन उसका दीन सोना और सोने से प्यारा ईमान चला गया। तो हमेशा अपने मामलात को अल्लाह पर डाल के मेरे रब जो तू करेगा मैं उस पर राजी हूँ, मैं उस पर बहुत खुश हूँ। और आप देखिए कि इस एक असूल पर अपनी ज़िंदगी को देखें, फिर इसमें आप देखिए कि हमें 3 वाक़यात मिलते हैं इस बात को समझने के। पहला वाक़या तो आपको मैं अपने लफ्ज़ों में सुनाती हूँ, इन्होंने इसको 5-6 पेजेस पे लिखा है, इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया अबू हुरैरा से, मैं अपने लफ्ज़ों में इसलिए सुनाना चाहूँगी कि रेफरेंस अब आपके सामने आ गया, तफसीली वाक़या आ गया, आपने बाद में इंशाल्लाह इस बुक को पढ़ना है, और अगर कभी ज़िंदगी में आपने इसका असाइनमेंट करना हुआ तो ये सारे वाक़यात आपको दोबारा पढ़ने को मिल जाएंगे। लेकिन असल में वाक़या कुछ इस तरह कह के, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक बीवी थी बहुत ही खूबसूरत और हसीन, हज़रत सारा, सब जानते हैं, बाज़ रिवायत में यहाँ तक आता है कि दुनिया का आधा हुसन उनको मिला था, इतनी हसीन थी। एक दफ़ा हिजरत कर रहे थे अल्लाह के रास्ते में, तो एक ऐसे बादशाह के अहद में से गुजरे या उसके रास्ते में आ रहा था कि जो खूबसूरत औरतों पर नज़र रखता था, जब उसने देखा कि एक बड़ी प्यारी औरत इस शख्स के साथ है तो उसने हज़रत हाजरा को लेना चाहा। जब उनको लेना चाहा, अल्लाह के हुक्म से हज़रत हाजरा जो थी उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तू मुझे इसके शर से बचा ले। जितनी भी बार उस बादशाह ने उस नेक औरत की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उस शख्स को रोक दिया, हत्ता कैसे लग रहा था कि जैसे वो ज़मीन में धंस रहा है। जब उसको ये पता चल गया कि ये औरत मेरे बस में नहीं है, ये यकीनन कोई नेक औरत है, तो ना सिर्फ ये कि उसने हज़रत सारा को आज़ाद किया, बल्कि जाते जाते अपनी लौंडी हाजिर या हाजरा नाम की दे दी। बहुत कम लोग जानते हैं कि हज़रत हाजरा इसी बादशाह की लौंडी थी, बाज़ तो कहते हैं ये बेटी थी, बहरहाल जो भी थी ये तारीखी वाक़यात, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो लौंडी आई हज़रत इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, वो एक जौजा के तौर पे मिली हज़रत, यानी आप देखिए उस दौर में ये कहना चाहिए कि क्या कहते हैं उसको, सौकनापा और इस तरह की चीज़ों को वो इशू नहीं बनाते थे जो आज हम पाकिस्तानी औरतें बना लेती हैं अमूमन। उस उन्होंने उनकी शादी हज़रत हाजरा से करवा दी, क्योंकि अभी तक हज़रत सारा और हज़रत इब्राहिम की औलाद नहीं थी। तो जब बीबी हाजरा से शादी हुई, हज़रत इब्राहिम की तो खैर क्या निकली, किसी को याद है कुरान सूरह साफ़ात, फलम्मा अस्लमा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उससे पैदा हुए। तो अब आप देखिए कि इब्राहिम और सारा को अल्लाह ताला ने एक मुश्किल में डाला, लेकिन खैर कितनी निकाली कि एक ऐसा बच्चा वहाँ से पैदा हुआ जिसको फिर अरब की बुरी नस्ल का अमीन कर दिया गया, उसी से फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। तो याद रखिए, जब भी कोई मुसीबत आए हाय दुहाय ना मचाइए, एक वक्त आएगा आपको खुद उसकी खैर मिलेगी। फिर दूसरा वाक़या जो है ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों का, आप में से सभी साथियों ने कम से कम दारे कुरान में तो सूरह यूसुफ़ पढ़ी होगी, कैसे उनके भाइयों ने उनको अंधे कुएं में डालना चाहा, ख्याल क्या था कि हम अपने बाप की मोहब्बत ले लेंगे, लेकिन आप देखिए कि वो अंधा कुआं हज़रत यूसुफ के उरूज और बनी इसराइल के मिस्र में कदम जमाने का जरिया बन गया। सूरह यूसुफ आयत 54-56 में इसका तذکرہ ہے, وقال الملك ملك توني به استخلصك لنفسي, के बादशाह ने खुद यूसुफ को बुलाया और कहा लेकर आओ उसको, मैं उसको अपने लिए खालिस करता हूँ। और अल्लाह ताला कहते हैं इन मुश्किलों से गुजार कर हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया, वजीर ख़जाना बन गए, जहाँ चाहते थे वो जाते थे, तो ये अल्लाह की हिकमत थी। अब आप देखिए अगर यूसुफ रोते धोते और वो कुएं में से निकलते शोर मचाते, मेरे साथ जुल्म हो गया, मैं लुट गया, मैं अपनों का बर्बाद किया हुआ, मुझे तो अपनों ने डसा, हम यही फजूल जुमले तो बोलते हैं, मुझे तो वो, मैं तो वो हूँ जिसको पानी भी ना मिले, मैं तो बर्बाद हो गया। और सबसे ज्यादा हाल दोहाल हम अपने प्यारों के छोटे छोटे मजालिम कह लीजिए, या उनकी हमारे ऊपर जो एक केयरिंग, एक थोड़ी सी एक कहना चाहिए कि ताल्लुकदारी की बुनियाद पे जो हमें तकलीफें आती हैं ना, हम सबसे ज्यादा उसका शोर मचाते हैं। हज़रत यूसुफ़ ने ऐसा कुछ नहीं किया, अल्लाह ने पूरी उम्मत को उसमें से खैर दे दी। तो याद रखिए, ये सारे वाक़यात इस किताब में तो समझ आ रहे हैं, पर ये मुझे अपनी ज़िंदगी की किताब का हिस्सा बनाने हैं। क्या सोचकर कि अगर मेरे ऊपर कोई मुश्किल आ गई, और अल्लाह ना करे आए, फिर भी आएंगी, क्योंकि आनी है, पहला ही जुमला कि आनी है, हर हाल में आनी है, तो अल्लाह बस सब्र दे दे और उसमें खैर दे दे। तीसरा वाक्या देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक मौका ऐसा आया था ग़ज़वे बदर के नाम पे, कि जब मुसलमानों को ख़बर मिली कि कुरैश का एक काफ़िला सामान तिजारत लेकर शाम से मक्का जाते हुए रास्ते में मदीना से गुजरेगा, उस काफ़िले में मुसलमानों ही के पैसों का माल था, जो कि हिजरत करने के बाद मक्का वालों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया। ख्याल किया था कि चलो थोड़ा सा रास्ते में रुकते हैं, और अगर उनसे तकाजा करते हैं हमारा माल हमें दे दें। अब हो क्या रहा था कि वो जो काफ़िला था वो अबू सुफियान की क़यादत में था, उसके ऊपर बेहतरीन माल था, सोना चांदी और बहुत, उसकी डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा। अब सहाबाए कराम और नबी सल्लम की ख्वाहिश क्या थी कि उस काफ़िले से सामना हो ताकि हम अपना माल वापस ले सकें। जब अबू सुफियान को ख़तरा लाहक हुआ खुद से ही कि भाई हम तो मदीना से गुजरने वाले हैं, तो उनको पता था हमने मुसलमानों के साथ क्या जुर्म किया हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम उनके मुल्क से गुजरें और सिक्योरिटी वाले हमें पकड़ लें। अबू सुफियान ने अपने ही तौर पर मक्का में मैसेज भेजा कि हमें हिफाजती काफिला चाहिए। उधर से अबू जहल अपने साथ एक भारी जंगी लश्कर लेकर आया, क्योंकि जब तिजारत के लिए गए थे तो उसमें कोई हथियार तो नहीं थे ना, थोड़ी बहुत बचाव की चीजें थी। ये पूरे साजो सामान ऊंटों घोड़ों और हथियारों से लैस होकर निकल पड़े। मुसलमानों के पास खबर आ गई। अब दो चीजें थी, वो काफिला सामने आए या ये आए। मुसलमानों की ख्वाहिश क्या थी कि ये काफिला सामने है, क्योंकि उनके पास बचाव का सामान नहीं, और जंग जीतने की सूरत में ये सारा माल जो है माल गनीमत बनेगा। अल्लाह ताला ने इस काफिले को तो बचा दिया। अबू सुफियान ने रास्ता बदला, वो मदीना को बाईपास करते हुए निकल गए, लेकिन अबू जहल का लश्कर आ धंसा। ये वाक्य अल्लाह ताला ने सूरत अनफाल आयत 5-8 है, 10वें पारे का बिल्कुल, सूरत अनफाल है ना, 9वें पारे में आएगा, अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा किया। कमा अखरजा का रब्बु का मिन बैती का बिल हक्की व इन नफरी का मिन अलमोमिनीन लकारी होन, कि जब आपके रब ने आपको हक के साथ अपने घर से निकाला, आप भी दुआ किया करें। जब भी सुबह घर से निकलते हैं ना पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, ये दुआ किया करें। मैं तो यही कह के आती हूँ कि अल्लाह, ये हमारा निकलना हक के लिए हो, ये हम तेरे दीन के लिए निकले हो, हमारी कुछ ज़ाती इसमें फ़ायदे ना हो और हमारी नीयतों में कोई खोट ना हो जाए। बहरहाल ये सब कुछ कर करा के निकले। अल्लाह के हुक्म से वो जंगी सामान से लैस काफिले से मुसलमानों का मुकाबला हो गया। अब वो चीज़ हुई जो मुसलमानों को पसंद नहीं थी, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, यही बात है कि आसान तक रहु शैयन व हुआ खैरुल लकुम। क्या फ़ायदा हुआ कि मुसलमानों का रोब जारी हो गया, अल्लाह ने हक को हक के जीत इधर से भी मुसलमानों की हुई। देखिए जरा सा जहन को लाइए आगे, अगर उस तजारती काफले से मुसलमान लड़ते और जीत जाते तो तारीख ने क्या कहना था, क्यों ना जीतते, वो बेचारे तो तिजारत के लिए आए थे, मुसलमान जालिम बन जाते, वो मजलूम बन जाते कि जी उन्होंने नहत्तों पे हाथ डाला, ये किया वो किया और सो ऑन, जो कुछ भी वो कहते। लेकिन इधर लड़े, और आज तक आप पढ़ के देखिए, नॉन मुस्लिम हिस्टोरियन जिनको मुस्तशरिकीन कहते हैं, यानी वो होते मुसलमान नहीं है लेकिन इस्लामी तारीख के वाक़यात को जमा करते हैं, वो आज भी हैरान है। बुक्स के नाम भी ऐसे आपको मिलेंगे कि बदर की फतह हुई तो कैसे हुई, तो अल्लाह ने उसके जरिए जो फैसला करवा दिया वो इन आयतों में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला हक को हक करवाता है। युरीदुल्लाह युहक्कल हक कभी कलिमतिही, बगैर असबाब के जब मुसलमान जीतते हैं, ये अल्लाह की तरफ से एक फतह की नवीद होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जिंदगी में आने वाले बहुत सारे वाकयात हैं हम नहीं समझते, बाज़ दफ़ा हम फौरी और मामूली फ़ायदे की चीज़ों को देख लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें दूर रस लंबा लॉन्ग टर्म फ़ायदा देना चाहते हैं। आज के दौर में आप दो लफ्ज़ सुनते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। देखिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या है कि आप आज रात से सुबह कल तक बहुत खूब इंजॉय करें, मौज करें, मस्ती करें, जो भी आपको दिल चाहे करें, लेकिन कल सुबह उठते ही आपको जेल में डाल दिया जाए या बीमार हो जाएँ, हॉस्पिटलाइज हो जाएँ, क्या वो एक रात का मज़ा हमें फ़ायदा देगा। शॉर्ट टर्म फ़ायदा तो इतना ही होता है, दुनिया के चंद दिन के मज़े और बाद में आखिरत की जेल है, लेकिन लॉन्ग टर्म फ़ायदे क्या होते हैं, जैसी गुजर रही है गुजरने दीजिए। जैसे एक शख्स है, उसको इख्तियार मिल जाए कि देखो तुम एक रात के लिए बादशाह बना दिए जाओ, या फिर जैसी गुजर रही है गुजारो और तुम्हें 100 साल की उम्र मिले, कौन सी पसंद करेगा। एक रात की बादशाही तो इसी खौफ में चली जाएगी कि कल उठते ही मुझे फांसी दे देंगे, लेकिन 100 साल की लंबी उम्र में कभी धूप कभी छांव, इट्स ओके। तो याद रखिए, लॉन्ग टर्म काम करने चाहिए। जैसे एक दरख्त होता है ना, तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। पहले दरख्त नीचे जड़ों में जाता है, फिर उसकी तना बनता है, फिर उसकी शाखें पत्ते, फिर 100 100 साल तक एक दरख्त जीता है। इसके बरक्स बेल, आज बीज डाला कल पत्ते निकले, थोड़े दिन में पूरी जमीन पे पत्ते फैल गए, लेकिन एक पीछे से डंठल काटेंगे सारे खुश्क होंगे। दीन का काम भी हमेशा दरख्त बन के करें, गहरी बुनियादों में। शो शा पंप एंड शो, उधर हो गया, ये हुआ, वो किया, बहुत लोग आ गए, ये कर दिया, दौड़ धूप, और बाद में पता चला कि एक डंडी कटी, सब खत्म हो गया। तो अल्लाह तआला की ये सुन्नत है कि दूर अस फवायद मुसलमानों को दिए गए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इसमें क्या हिकमतें निकली, कि बदर के वो जो 313 थे उनकी शान कितनी है, अल्लाह तआला ने उनके लिए क्या कुछ फरमाया। यहाँ अकवाल लिखे हुए, आप सिर्फ सुने मेरी बात, बाद में जाके पढ़ के देखिएगा। इमाम अहमद ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा कि अल्लाह तआला ने अहले बदर पर झांका, जरा सोचिए कैसा फील हुआ होगा, लल्लाहु इत्तला, झांका, और फिर फरमाया तुम जो चाहो करो, बिला शुबा मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आज ये छत खुले और अल्लाह हमें झांक के कह देना, आज के बाद जो करना है कर लो, मैंने बख्श दिया, तो मेरा ले हम में से कोई मस्जिद ही ना आए कल से, क्या वो तो बख्शे बख्शाएंगे। हम तो पार्टी ऐसी रख ले अपने बख्शे होने पे और अपने जन्नती होने पे कि वो फिर हमें दोबारा जहन्नमी होना पड़े, हम तो ऐसे करते हैं। ये तो वो खूबसूरत दिलों वाले लोग थे कि जिनको इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट दे दिए, लेकिन वो हटे नहीं अपने रस्तों से। आप देखिए अशरे मुबशरा, 10 लोग दुनिया में उनको जन्नत की खुशखबरी, 1400 लोग असहाबे बैत थे उन्होंने जन्नत की खुशखबरी, और ये 313 का दर्जा तो सबसे ऊपर है। आपको पता ही होगा सबसे ऊपर नबी सल्लम, फिर खुलफाए राशिदीन जिसमें अबू बकर सिद्दीक है, खुलफाए राशिदीन के बाद ये 10 लोग जो है अशरे मुबशरा, और उनके बाद ये 313 बदर के सहाबी हैं, फिर 1400 दूसरे असहाबे बैत हैं। तो इनके दर्जे हैं, सिवा अल्लाह ने इनको हमेशा के लिए इज्जत दे दी, जन्नत वाजिब कर दी। तो क्या पता चला इस पॉइंट से, हमने क्या सीखा कि हर मुसीबत के अंदर कोई ना कोई खैर होती है। इस पर यकीन रखिए, आज थोड़ा सा सब्र करें, एक दफा कड़वा घूंट तो भरें। आप देखिए कि बाज दफा हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, तो हम कहते हैं बेटा तुम्हें कल पता चलेगा। बाज दफा हमारे माँ बाप हमारी बात नहीं मानते, औलाद को ज्यादा समझ होती है, तो वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, कल आने वाले दौर में इनको पता लगेगा। आप मैं अपने लिए क्या लें, अगर बच्ची हूँ औलाद हूँ तो माँ बाप की हिकमत को समझ जाऊँ, और अगर मैं समझ लीजिए कि माँ बाप हूँ तो मैं एक बच्चे की हिकमत को समझूँ। सिर्फ एक बात को जिद बनाकर चिढ़चिढ़ाकर हाँ को यस ना और ना को हाँ में ना बदलना, ये बेवकूफ़ी की बात होती है, इससे हमेशा नुकसान होता है। तो बहरहाल पांचवा फायदा हम सबको पसंद आया, आज से इधर राइट अवे टूडे 30 दिसंबर है आज माशाल्लाह, आप देखिएगा कि आज से अपनी जिंदगी के अंदर आने वाले छोटे बड़े वाकयात को देखें। आप यहाँ से भी निकलेंगे 10 आपको इसकी मिसालें मिलेंगी। आपने एक रास्ता लिया कि यहाँ रश नहीं होगा, लेकिन रश मिल गया। आपकी गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई, आप कहते गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, क्यों नहीं हो रही, अल्लाह ने आपको 15 मिनट गाड़ी में डाल दिया, सुबह सबके साथ यही कुछ होके आता है ना, लेकिन फिर उसके बाद ट्रैफिक नहीं मिलती, आप ट्रैफिक में फंस जाएं या गाड़ी में सुबह 8 बजे निकल आए, बात तो एक ही होती है ना। तो हमेशा राजी रहें, खुशी से कबूल करें। यानी मैं अक्सर एक जुमला अपने लिए, तो मैंने अपना स्लोगन ही ये रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा हाल इसी वजह से आज तक तो जिंदगी में कोई गम आया ही नहीं, ना तकलीफ आई, ना बीमारी आई, ना दुख आया, कभी लगता ही नहीं परेशानी आई। जब मैं किसी के मुंह से ये बात सुनती हूँ ना, मुझे बड़े मसले आए जिंदगी में, बड़े गम आए, बस मैं भूल गई, तो मैं कहती हूँ ये क्यों ऐसे कह रही हैं, ये तो अल्लाह की शिकायत लगा रही हैं, मुझे तो नहीं आया क्योंकि मैंने उसको महसूस ही नहीं किया, फिर क्या हुआ, ये तो मेरे रब का तोहफा था। तो जब आप उसकी खैर देखेंगे ना, इंशाल्लाह फायदा होगा। अब अगले में और भी थोड़ा सा इस बात को हम क्लियर देखेंगे। छठा पॉइंट अब लेंगे हम, मुसीबतों और इब्तलाओं के फवायद को पेश नजर रखें। यानी पीछे तो क्या था कि खैर में शर, शर में खैर है, अब ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है कि जब कोई मुसीबत और तकलीफ आए तो ढूंढें, जैसे हम अंदर खाता ढूंढते हैं ना, इसके अंदर क्या है, तो आप उसके अंदर की खैर को ढूंढे, आप उसमें से आपको बहुत सारी खैर मिलेंगी। इधर आपके इस पॉइंट बड़े खूबसूरत लिखे हुए हैं, मसलन तकरीबन हम 16 17 पॉइंट पढ़ने लगे हैं, जरा सा तवज्जो को सामने रखिएगा। आप बुक में अगर सिर्फ उतने ही से को हाईलाइट करें, कर ले नहीं है, बाद में फारिग होकर आराम से इस बुक को पढ़िएगा। सुकून से रोज के 2 सफ़े 4 सफ़े करके जज्व करें। जब आप बुक पढ़ें ना तो उसको एब्जॉर्ब करना होता है। जैसे आप खाने कब 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 खाना खा रहे हैं तो खाना फंसेगा। एक लुकमा खाया, उसको चबाइए, सुकून से निगलिए, फिर दूसरा लीजिए। इस किताब को अगर 3 महीने लगा कर भी आप पढ़ लें, और मैं आपको मशवरा दूंगी अपने घर वालों के साथ पढ़ें, क्योंकि इस बुक में कोई मसलक नहीं है, इसकी कोई जमात नहीं है, इसका कोई ग्रोह, ये कोई इसमें कोई ना नमाज के तरीके पढ़े हैं ना शिरक बिदत पढ़ा, ये तो डेट ये तो नॉन मुस्लिम्स के साथ पढ़े। मैं ये बुक पूरे शरह सदर के साथ नॉन मुस्लिम सिस्टर्स को पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि वो भी डिप्रेस हैं। आप हॉस्पिटल्स में जाएं, इसके बुक के पॉइंट नोट कीजिए, तो अपने घर वाले अपने दोस्तों में आप सब इसमें इस बुक को या इस प्रोग्राम का सदका जारी किस तरह बने कि आप लोग इस बुक को अपने अपने खानदानों में शुरू कर लें। सब कह दें एक हफ्ते में एक दिन बैठेंगे, शुरू से शुरू करें। और ये इतनी आसान है कि आप अगर ऑडियो ना भी सुनेंगे, सिर्फ बुक खोल के जो पॉइंट मेन आपने सीखे आप खुद लोगों से डिस्कस करें, तो आप जितने साथी हैं, मेरा ख्याल है यहाँ 200-200 क्लास शुरू हो सकती है, अगर हम में से हर बंदा अगर कोशिश करे कि अपने प्यारों के साथ करें। और यकीन करें आप हर वक्त फ़ोन पर बातें नहीं कर रहे होते, फलां बीमार, फलां दुखी, उसका बच्चा छोड़ गया, उसके ये हो गया, उसके शौहर ऐसे हैं, तो इसका जवाब इस बुक में। मेरा नहीं ख्याल इस मौजू पर कोई हदीस या कुरान की आयत रह गई है, क्योंकि जब आप इसको थॉरोली पढ़ेंगे आप खुद गवाही देंगे हर हदीस और हर आयत इसमें मौजूद है जिसका कहीं ना कहीं ताल्लुक मुसीबतों से। कहना चाहिए कि जैसे हर मरज की दवा इसमें आ गई है, सिर्फ अब हमने इससे फायदा लेना है। तो आइए जरा गो थ्रू करते हैं फवायद क्या हैं, यानी मुसीबतों में क्या क्या फायदे छुपे होते हैं। सबसे पहला फायदा कि इंसान को अल्लाह की रबूबियत की शान और उसके ज़बरदस्त गलबे की पहचान होती है। क्या समझे, है मुझसे ऊपर कोई जो मेरे ऊपर अपने फैसले ला रहा है। हज़रत अली का एक जुमला याद आ रहा है, कहा करते थे कि मैंने इरादों के टूटने से रब को पहचाना। मैं रात को एक इरादा करके सोता हूँ, सुबह उठता हूँ मेरा इरादा बदल चुका होता है, तो मैं सोचता हूँ ये कौन सी ज़ात है जिसने मेरा इरादा बदल दिया, तो वो अल्लाह की ज़ात है। तो हमें एहसास होता है ना कोई हमसे ऊपर है। पीछे शायद मैंने आपको वो सुनाई थी बात कि फिरौन को इतनी तवील उम्र मिली लेकिन एक भी दफ़ा सर का दर्द ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर कभी हो जाता तो उसको यकीन आ जाना था कि मेरे ऊपर भी कोई ज़ात है कि जो मुझे बीमार कर सकती है। तो पहली चीज़ हमें अल्लाह के गलबे का यकीन आता है। दूसरा बिल्कुल इससे अपोजिट, अपने बंदे होने का, अपनी आजजी का और अपनी जिल्लत की, इनके सारी का पता चलता है कि मैं बंदा हूँ। वो कहते हैं ना कि अल्लाह 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 है बंदा बंदा, रब आसमान है दुनिया पे भी आ जाए वो रब भी है, बंदा बंदा चाहे वो आसमान पे चला जाए, यानी नबी सल्लम को मेराज के मौके पे आसमानों पे सैर कराई गई लेकिन वो बंदे ही रहे। तो हमें अपनी आजजी का समझ आता है, और इसके ऊपर आप देखेंगे कि जितना हम अपने बंदे होने को कबूल कर लेंगे ना उतना हम बच जाएंगे। मैं कहती हूँ क्यों बड़े बनते हो, मान क्यों नहीं लेते? जैसे आप देखिए एक बंदा ना, पैसे कोई नहीं है उसकी जेब में लेकिन लोगों को बताते हैं मैं साहूकार हूँ, बहुत दौलतमंद हूँ। एक आया हज़ारों लगा दिए, कल दूसरा आएगा, तीसरा, पांचवें दिन घर का निज़ाम बिगड़ जाएगा। बीवी कहेगी कि पैसे तो है कोई नहीं, आप कर्जों में बढ़ा रहे हैं, आप क्यों इतना भर भर के खर्चा कर रहे हैं, है ना। बाज़ दफ़ा हम खुशियों में या आम दिनों में अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे होते, तो आखिर एक दिन फिर हम ऐसे बोझ में आते हैं कि हम उठते ही नहीं है। समझ आ गई ना? जब एक गरीब बंदा बढ़ चढ़ के मुकाबले पे या दिखावे के लिए या जो भी करे लुटाने लगता है तो आखिर में थकेगा। आपको कहा जाए कि आप यहाँ से कितना चल सकती हैं, आप कहेंगे मैं आधा मील चल लूँगी, इट्स फाइन। आप कहते हैं मैं 5 मील चलूँगी, आधा मील चलेंगी, 1 मील चलेंगी, डेढ़ चल, तीसरे मील के ऊपर आपकी टांगे थक जाएंगी। लेकिन चूंकि आप कह चुकी हैं कि मैंने 5 मील चलना है, हो सकता है कि आपका दिल खट जाए लेकिन आप चलती रहेंगी। तो फिर जरूरत क्या, भाई इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। आप 10 किलो उठा ले, 15 किलो उठा ले भी, आप कहते हैं मैं 100 किलो उठा के यहां से जा सकती हूँ 1 घंटा दूर, नहीं जा सकते। तो रियलाइज कीजिए, मैं और आप खुश रहना चाहते हैं अपनी कमजोरी को कि अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका इब्नु अब्दिका इब्नु अम्मतिका, मैं भी बंदी, मेरा बाप भी तेरा बंदा, मेरी माँ भी तेरी बंदी, बस नासियति बियदिका, मेरी पेशानी तेरे हाथ में है, मा दिन फी या हुक्मों का, तेरा जो हुक्म है मेरे मामले में, अदलुन फी या कदाओ का, तेरा मामला मेरे साथ बड़े अदल वाला है। तो बंदा अपने आप को बंदा समझे, ये दूसरा फायदा होता है। तीसरा देखिए इखलास आता है, खालिस होता है। जैसे पीछे हमने शुरू में पढ़ा ना कि मुसीबतों से बंदे का ईमान खालिस होता है, तप जाता है, जैसे भट्टी में अगर सोने को डालें सारा खोट खपड़ जो है वो निकल जाता है और इन सोना बिल्कुल प्योर फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह मुसीबतों में हमारे अंदर जो खोट खपट होता है ना, जो अलाइशें होती हैं, जो गंदी आदत होती हैं, वो सारी ख़त्म होती हैं। और अल्लाह ताला ने सूरत अलनकबूत आयत 65 में भी फरमाया, फ़ाइज़ा रकीबू फिल फुल की दा वल्लाह मुखलिसीन अलहुद्दीन, कि जब कश्तियों में फंस जाते हैं ना तो वहाँ सिर्फ़ एक अल्लाह को पुकारते हैं, वहाँ कोई करने वाला नहीं आता, वहाँ कोई दाता नहीं आता, मुश्किल कुशा नहीं आता, गौसे आज़म नहीं आता, वहाँ कौन आता है? वो रब आता है। मक्का वालों की आदत थी, कहते थे ये ज़मीन पे जो हमारे छोटे छोटे काम है ना, ये हमारे माबूद और हमारे बुजुर्ग करते हैं, समंदरों में जब हम फंसेंगे ना तो वो काम वो नहीं कर सकते, वहाँ तो अल्लाह करता है। इस एक बात ने इकरमा का दिल खोल दिया था, जब अबू जहल के बेटे थे, जब एक भंवर में फंसे, और फंसे भी कब, जब फतेह मक्का के मौके पे भाग रहे थे मफरूर कैदी हो के, कश्ती जद्दा की तरफ जा रही थी या हफशा की तरफ, चल बैठ के उसमें ऐन बीच में कश्ती पहुंची तो तूफान आ गया, तो वो जो वहाँ उसके अंदर सवार लोग थे उन्होंने उस दौर के रिवाज के मुताबिक यही किया, अब यहाँ ज़मीन के खुदा नहीं आएंगे, अब हमारे बुजुर्ग यहाँ नहीं आ सकते, अब ऊपर वाले को पुकारो। लोगों ने पुकारना शुरू किया तो इकरमा कहने लगे यही बात तो वो अल्लाह का बंदा मोहम्मद कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाकई अगर तुम्हारे ये बुजुर्ग समंदर में नहीं आ पा रहे तुम्हारी मदद करने, तो वो अल्लाह ही खुश्की पे भी ये नहीं करते, वो अल्लाह ही करता है। वहाँ दिल खुला, कहा अल्लाह वापस ले जा, अगर इस समंदर से तूने बचा लिया ना, इस तूफान से बचा लिया, तो अब मैं वापस जाऊँगा, आगे नहीं आऊँगा। वही हुआ, अल्लाह ने कश्ती बचा दी, बचाता तो अल्लाह ही है। ये अलग बात है, लोग कहते हैं कि जी ख्वाजा खिजर ने हमारी कश्ती बचाई और नाउज़ु बिल्लाह क्या कुछ, बहरहाल ये वापस गए और फिर ये मुसलमान हो गए। क्या हुआ, इस समंदर की कश्ती या इस भंवर में डाल के अल्लाह ने इनके ईमान को खालिस कर दिया। फिर दूसरा आप देखिए सूरत अलनाम आयत 17 है, वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफलहु इल्ला हुआ। मैं कहती हूँ ये आयत अगर समझ आ जाए ना, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में गम नहीं रहेगा। लोगों का कोई प्रेशर, लोगों की बड़ाई, लोगों को राज़ी करना, लोग नाराज़, यानी सबसे बड़ी बात है कि जिसको ये आयत समझ आ जाती है ना, उसका मसला लोग नहीं रहते। सारी दुनिया मुझसे राज़ी हो जाए और मेरा रब अगर मुझसे नाराज़ है तो मेरा कुछ नहीं बनेगा। और इसका अपोजिट, यकीन करें जिन लोगों को खुश करने के लिए हम रब को नाराज़ करते हैं ना, फिर जब मुश्किल पड़ती है तो फिर ये रब ही हमारी मदद करता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि जब अल्लाह कोई तकलीफ़ देना चाहे तो कोई तीसरा नहीं दे सकता। तो इस तरह बंदा खालिस हो जाता है और अल्लाह पे भरोसा करने लगता है। चौथा फ़ायदा क्या होता है, अलिनाबतु इलल्लाहि ताला वल इक़बालु इलैही, अल्लाह की जानिब रुजू होने लगता है और उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। कई लोग हिदायत से दूर होते हैं, ज़िंदगी में कोई एक हादसा हुआ, नमाजी हो गए, बेनमाजी हैं जी, मैंने नमाज कब शुरू की, जब मेरे अचानक मेरे भाई का इंतकाल हो गया। हमारे अपने फैमिली नहीं, यहाँ ओस्लो में ब्रदर्स हैं, मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, तो वो आज बहुत रिलीजियस बच्चे हैं, यानी अच्छे देख के दीनदार फैमिली लगती है, तो वो कहते हैं कि हम कुछ साल पहले ऐसे नहीं थे। कब हुए, उनका एक भाई सडनली, यानी खड़े खड़े उसको कुछ हुआ हार्ट अटैक, तो वो उनका तीसरा था या दूसरा था, तो जवान भाई मरा, वो कहते हैं उसके बाद हम सारे भाइयों का रुख बदल गया, ऐसा ऐसा किबला चेंज हुआ, पूरी पूरे फैमिली का रुख चेंज हो गया। तो क्या हुआ, इनाबतुन इलल्लाह। आप भी तो सोचिए ना, कोई दुख का ही लम्हा होता है जब बंदा अल्लाह के दीन की तरफ आता है। हमें खुद क्लासेस में आके लोग बताते हैं, हम दुखी थे, फिर हमारी दोस्त हमें कुरान सुनाने ले आई, उसके बाद दिल बदल गया, शोहर की डेथ हो गई, अब इद्दत में बैठे हुए हैं, घर में डिप्रेस है, नहीं किसी ने कहा नहीं चलो तुम कुरान सीखो, सीखा अब तो शोहर भूल ही गए कि चलो अल्लाह ने बाहर एक वक्त दिया, हम इसको कबूल कर रहे हैं। तो इनाबत इलल्लाह होता है और बंदा अल्लाह की तरफ आता है। पांचवा फायदा क्या होता है मुसीबतों के अंदर, अतदर्रु व दुआ, इंसान को दुआ का मौका मिल जाता है। देखे ना, जब तक चोट नहीं पड़ती दुआ भी नहीं निकलती। कोई भी शादी हॉल में बैठे हुए लोगों को हमने नहीं दुआएं करते देखा। ये अलग बात है कि मैयत आगे रखी हो तो थोड़ी थोड़ी देर बाद चलो जी दुआ करते हैं, दुआ के लिए हाथ करते हैं, तो गिरिया जारी, इल्हा या रब्बी, ऐ अल्लाह मैं क्या करूं, अल्लाह मुझे तेरी ज़रूरत है। तो हमें तकलीफ़ों में अल्लाह ताला से दुआ मांगने का मौका मिलता है। इसकी दलील आपके सामने लिखी हुई है, सूरत अलानाम आयत 41 है, बल इयाहु तदून फयक्षिफु मा तदून इलैहि इंशा व तनसौन मा तुश्रिकून, बल्कि ख़ास इन्हीं को पुकारो फिर जिसके दूर करने के लिए तुम फरियाद कर रहे हो, अगर वो चाहेंगे तो इसे दूर फरमा देंगे और तुम उन सब को भूल जाओगे जिन्हें तुम शरीक ठहराते थे। क्या पता चला कि जब बंदे को तकलीफ आती है तो वो ऊपर के सारे सहारे खत्म हो जाते हैं। फिर इसी तरह सूरत यूनुस आयत 12 है, वह इज़ा मस्सल इंसान दुर्रुदाना, जब इंसान को हमारी तरफ से कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो हमको ही पुकारता है। फिर इसी तरह से सूरत बनी इसराइल आयत 67 में आता है, वइज़ा मस्सकुम दुर्रु फिल बहरी दल्ला मा तदून इल्ला इया, और जब तुम्हें समंदर में मुसीबत पहुंचती है तो इन यानी अल्लाह के सिवा सबको तुम भूल जाते हो जिनको तुम पहले पुकारते थे। फिर एक और दलील है इसी की, सूरत अलनाम आयत 63, कुल मई युनज्जीकुम, कुल मई युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्री वल बहरी तदूनहु तदर्रुअम व खुफिया वखुफियतन लैन अनजाना मिन हाजिही लनकूनन्ना मिन अश्शाकिरीन। आप कह दीजिए वो कौन है जो तुम्हें खुश्की और समंदर की तारीकियों से निजात देता है, तुम इन्हें गिरिया करते हुए चुपके चुपके पुकारते हो, अगर आपने हमें इसे निजात दे दी तो यकीनन हम शुक्र गुजारों में से हो जाएंगे। तो क्या पता चला, पांचवा फायदा, पांचवा छुपा हुआ एक, पांचवी छुपी हुई खैर मुसीबतों में जो होती है वो क्या कि हमें गिरियाजारी और दुआ का मौका मिल जाता है अल्लाह ताला से। छठा क्या है, अल हिल्मु मिम्मन सदरत अनहुल मुसीबा, जिससे मुसीबत पहुंची हो इसके साथ बुर्दबारी का मामला करना, यानी जिसको इंग्लिश में आप लिख लें खेल विद काइंडनेस का मौका मिल जाता है। जो हमें सताते हैं हमें उनको माफ़ करने का मौका मिलता है, और आपको पता है कि माफ़ी का अजर बहुत ज़्यादा, हलीम होने का, इन्ना इब्राहिम अला उवाहुन हलीम, सूरत तौबा आयत 14 में आता है कि बेशक इब्राहिम बड़े बुर्दबार थे, बड़े नरम थे। फिर इसी तरह एक हदीस है नबी सल्लम की, अशजो से कही थी आपने, सही मुस्लिम की रिवायत है, असल में एक काफ़िला आया, दूर से आए पसीने में अटे हुए और गर्मी सर्दी आपको पता है, तो काफ़िले के लोग जूं ही मस्जिद नबवी में आए जल्दी से आके टूट के अल्लाह के नबी से, आपसे बड़े उदास थे, आपको याद कर रहे थे, मिल रहे हैं, अब जिस्म पे स्मेल भी है, पसीना भी है, बू भी है, तो नागवारी का एहसास हुआ। लेकिन जो उनके सरदार थे उनका नाम अशजो बिन अब्दुल, अशजो अब्दुल कैस था, वो अपनी सवारी से उतरे, सवारी को बांधा, फिर दूर गए, कहीं साफ सुथरे हुए, नहाए धोए, साफ कपड़े पहन के नबी सल्लम को मिलने आए, बड़ी तहम्मुल की चाल चलते हुए। उस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया था, इन नफी कल खसलतैन, ऐ अशजो तेरे अंदर दो खसलतें हैं, युहिब्बहुमल्लाहु ताला, जिनको अल्लाह बहुत पसंद करता है, कौन सी है, अल हिल्म वल अना, हिल्म तहम्मुल और अना। हम तो बाज़ दफ़ा किसी का हाथ मरोड़ते हैं, कई दफ़ा लोग हाथ मिल मरोड़ते हैं, यकीन करें उंगलियां पिस जाती हैं, आपको गले मिलेंगे पसलियां टूट जाती हैं, वो ऐसी मोहब्बत का इजहार, समझ ही नहीं होता कि हम पे टूटी क्या बबला है, भाई मोहब्बत ही बड़ी आ गई, प्यार ही बड़ा आ गया। तो इससे क्या पता चलता है कि बंदे को साफ सुथरा डिसेंट दिखना चाहिए, दीन के नाम पे हलचले और बाल बिखरे हुए और चले बल्ले और बस जी मोहब्बत ही बड़ी और दीन वाले ही बड़े हो गए, ये अच्छा नहीं, कभी कभी ठीक होता है बच्चों के साथ, लेकिन आम तौर पे ये चीज़ और पन नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या पता चला कि हिल्म आ जाता है। अब सफ़र की मुसीबत थी, मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को इससे बचा लिया। सातवां फ़ायदा मुसीबतों के अंदर जो छुपा होता है वो क्या है, अल अफ़ू अनजानीहा, अनजानीहा वलाफीना अनिन्नास, क्या मतलब है सातवीं चीज़, ज्यादती करने वाले से दरगुजर करना, यानी अगर कोई हम पे ज्यादती करे ही ना तो हम दरगुजर किससे करेंगे, और हम दरगुजर नहीं करेंगे तो हमें अजर कैसे मिलेगा। अल्लाह ताला सूरत आले इमरान आयत नंबर 134 में फरमाते हैं, वलाफीना अनिन्नास, यानी अच्छे लोग जो होते हैं उनकी तारीफों में एक खूबी क्या है कि वो लोगों को माफ़ करते हैं। फिर इसी तरह से सूरत शूरा आयत 40 में आता है, फमन अफा वसलहा फाजरुहु अलल्लाही अलल्लाह, यानी जो कोई माफ़ करे और इस्लाह कर दे तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। तो क्या पता चला कि आपको मुझे दूसरों से दरगुजर करने का मौका मिल जाता है, और जितना ज़्यादा हम इस पे फिक्र करेंगे मतलब दरगुजर करेंगे, हमारे दर्जे अल्लाह के यहाँ बढ़ेंगे। यकीन करें कि आप पे ज़्यादती करने वाला आपका मोहसिन होता है। लिख ले ये बात, जिन रिश्तों को या जिन साथियों को जिन प्यारों को हम कोसते हैं ना, हाय इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बास औरतें वो कहती हैं मैं इसको नहीं माफ़ कर सकती, क्यों, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। फिर क्या बर्बाद की आपकी ज़िंदगी, इधर से ना होती कहीं और बर्बाद हो जानी थी, ये तो वैसे ही ख़त्म हो रही है। लेकिन अगर बिलफर्ज किसी ने अपनी बीवी पर जुल्म किया, उसकी कदर नहीं की, तो क्या हुआ, 10 साल 20 साल 15 साल उसको हमेशा का अजर दिल में दिलवा दिया, उसके लिए खैर के रास्ते खोल दिए। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। देखिए कुछ लोग हैं ना, मतलब ये ग्लास रखा हुआ टेबल पे, मैं आपसे पूछूं बताइए इस ग्लास की क्या हालत है। कोई कहेगा कि आधा ग्लास खाली है, कुछ कहेंगे आधा भरा हुआ है। खाली वालों ने यहाँ से ऊपर से लेके यहाँ तक देखा, और जो कहेंगे भरा हुआ है उन्होंने नीचे से ऊपर देखा। जवाब किसका दुरुस्त है? देखने में बात दोनों की ठीक है, मैथमेटिकली देख लें तो दोनों ठीक कह रहे हैं, लेकिन असल में जिन्होंने भरा हुआ कहा ये पॉजिटिव्स हैं और ऊपर वाले नेगेटिव्स हैं। हमारी आंखों की जो ग्लासेस, जो आई ग्लासेस होते हैं, उसके भी तो कभी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ना। किसी को दूर का ठीक दिखता है, किसी को करीब का ठीक दिखता है। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अपने आप को हमेशा खैर वाला रखें कि इसमें कोई ना कोई खैर ही हुई, मुझे इससे फायदा ही होगा। आठवां फायदा क्या है? असब्रु अलैहा, सब्र का मौका मिलता है। तकलीफ पे सब्र करेंगे तो फायदा होगा, और सब्र जो है वो क्या है? हुवा मूजिबुली मोहब्बतिल्लाहि ताला व कसरति सवाबिही, के तकलीफों पे हमें सब्र करने का मौका मिलता है, और वो सब्र हमें अल्लाह की मोहब्बत लेने का हकदार बनाता है। इसके फिर दलाइल बहुत सारे हैं कि सब्र वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। मसलन सूरत आल इमरान आयत 146 में आता है, वल्लाहु युहिब्बु साबिरीन। फिर इसी तरह सूरत जुमर आयत 10 में आता है, इन्नमा युवफ्फ साबिरून अजरहुम बिगैरी हिसाब, बेशक सबर करने वाले अपने अजर बेहिसाब दिए जाएंगे। फिर इसी तरह से सही बुखारी की एक रिवायत में आपने फरमाया, वमा ऊतिया अहदुन आतान खैरन व औसा मिनस सबरी, कि जिस किसी को सब्र की तौफीक दे दी गई, इससे ज्यादा बड़ी नेमत किसी को नहीं दी गई। मैं अक्सर सोचती हूँ इस बात को, और यकीन करें सब्र का मौजू भी अलग से सुने। मैंने इसको शायद 20 एंगल से मुख्तलिफ तरीके से किया है। मुझे तो एक जुमला समझ आता है कि पूरे का पूरा दीन सब्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह आप कह नहीं सकते अगर सब्र ना करें एक खुदा पे। चारों तरफ चमकीले रंग बिरंगे खुदा तो हैं, हमारा ईमान बेचने खरीदने वाले बहुत है। ज़रा कोई मुश्किल में पड़ता है, लोग कहते हैं चलो अब्दुल्ला शाह गाजी ले जाऊँ, वहाँ से तुम्हारी हाजतें पूरी होंगी। अब अगर एक अल्लाह पे सब्र नहीं करेंगे तो आप तो दर दर पे जाएंगे, भटकेंगे। नमाज पढ़ सकते हैं अगर सब्र ना हो, क्योंकि नमाज ने ना बोल सकते, ना खा सकते, ना सो सकते, ना सोच सकते, सब्र है। रोज़ा तो है ही निरा सब्र। हज कर सकते हैं अगर सब्र ना हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकते हैं अगर सब्र ना हो कि अपने माल को दूसरों से शेयर कर देना। कनात का नाम सब्र है, सिला रहमी सब्र से होती है, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक सब्र है। तो सब्र ही असल में पूरे दीन का खुलासा है। इसमें मुझे याद आ रहा है एक लेक्चर कि उसमें हमने सब्र के सारे एंगल्स और इसकी मुख्तलिफ किस्में सीखी थी। तो सब्र करने का मौका जो है वो इंसान को अल्लाह ताला की मोहब्बत का हकदार बनाता है। नवा फायदा यानी नवा छुपा हुआ फायदा मुसीबतों में क्या होता है? अल-फ़राहु बिहाली अजली फवाइदिहा, قال الله عليه السلام, यानी नवा फायदा क्या है कि उस मुसीबत के फवायद की बिना पर उसके साथ यानी उसके आने पर खुशी होना। ये क्या बात हुई, जरा समझिएगा इसको। पहली दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इब्ने माजा की, वल्लजी नफ्सी बियदिही इन कानु लयफ्रहून बिल बलाई कमा तफ्रहून बिर रखाई। इसको हाईलाइट करें। हमारे कल्चर में ऐसे किरदार हमें बहुत कम दिखते हैं, लेकिन आप सुन के देख लीजिए सहाबा कैसे थे। इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यकीनन वो यानी नबी और नेक लोग आजमाइश के आने पर ऐसे खुश होते थे जैसे तुम आसूदगी के साथ खुश होते हो। आप कहते हैं ये सब्र का अला दर्जा है। इस पे भी वो जो लेक्चर का जिक्र किया है उसमें हमने सब्र के डिफरेंट एंगल पढ़े थे कि एक तो आता है कि मुसीबत आने पे बंदा सब्र करता है, दूसरा ये होता है कि मुसीबत ना आए तो बंदा तलब कर रहा होता है कि कोई मुश्किल आए और मैं उस पर सब्र करूं। तो क्या पता चला कि सब्र की अगर अहमियत पता चल जाए तो हमें उसकी खुशी महसूस होने लगेगी, हम उस पर खुश होने लगेंगे। हम हाल दो हाल में चाल देते हैं, ये दुरुस्त बात नहीं है। फिर दसवां फायदा क्या है कि अल अशुक्रु अलैहा, तकलीफ पे शुक्र करने का मौका मिल जाता है। बस आप देखिए एक मरीज है, जिस्म के अज़ा काटने हैं उसके। अब वो जिस डॉक्टर ने उसका हाथ काटा, मतलब शुगर में बाज़ दफ़ा जिस्म का कोई एक उज़्व बेकार हो जाता है, पाँव काटना पड़ता है। क्यों? पाँव काटेंगे तो जिस्म बचेगा। कभी उंगली काटी, कभी टांग काटी, क्या हम उस डॉक्टर के ऊपर केस करते हैं? बल्कि लोग तो उस तबीब का शुक्रिया अदा करते हैं। क्यों? कि उसने पाँव काट दिया और पूरा जिस्म बच गया। समझ आइए, صحت یابی کے لیے. اسی طرح مصیبت آنے پہ بندہ اللہ کا شکر کرے کہ اللہ چھوٹی مصیبت سے ٹل گیا ہوں, بڑی نہیں آئی. گیارہواں فائدہ دیکھیے گا, تمحیصہا للذنوب والخطایا, اس مصیبت کا گناہوں اور خطاؤں کو دور کرنا. یہ تو پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, جب تکلیف آتی نا تو ہمارے پچھلے گناہوں کے کفارے ہوتے ہیں. تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ کفارے ہوں؟ آپ دیکھیے نا پیوریفیکیشن کا عمل ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو جب مصیبت آئے اس کے اندر ایک چھپی ہوئی بات یہ ہے کہ اس مصیبت کو بھی بھول جائیں, پچھلا کوئی گناہ یاد کریں جس کی بنیاد پہ آپ نے قبر میں ازمائے جانا تھا, یا جس کی بنیاد پہ اللہ نے جہنم میں دو چار ڈبکیاں دینی تھی. تو بجائے اس کے کرنے کے اللہ نے دنیا میں سال مصیبت کر دی, ڈال دی, ایک سال بستر پہ ڈال دیا, تو اس مصیبت نے آپ کے وہ گناہ اور وہ مصیبتیں جو تھی وہ دھو دی, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر تکلیفوں کے ہی معاف کر دے. پھر اسی طرح سے اس کے اوپر بہت ساری روایت آگے انشاءاللہ آنے والی ہیں صبر کی, ہم پڑھیں گے. لیکن اب ہم چلتے ہیں بارہویں فائدے پہ, اور وہ بارہواں کیا ہے, رحمت اہل البلائی و مساعدتہم علی بلواہم فالناس معافی و مبتلیجن. یعنی اہل ابتلا کون, جس پہ مشکل آئی ہے, یعنی جن پر مشکل آئی ہے ان پر شفقت اور ان میں ان کے ساتھ تعاون کرنا. کچھ لوگ عافیت میں ہیں اور کچھ آزمائش میں ہیں, تو تم امتحان میں مبتلا لوگوں پر شفقت کرو اور عافیت کے عطا کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرو. تھوڑی سی ٹرکی بات لگ رہی ہے, یعنی ایک ہے میرے اوپر تکلیف آئی تو میں صبر کر رہی ہوں, دوسرا یہ ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ کسی دوسرے پہ تکلیف آئی ہے تو مجھے اس میں کیا فائدہ ملا کہ میں جا کے اس سے ہمدردی کروں. یعنی مسلمانوں کو دوسروں کی مصیبتوں پہ نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے. مثلا آپ کو پتہ ہے نا ہمارے دین میں ایسا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے گھر پہ جاؤ, تعزیت کرو, اس کا اجر ہے. دعا ہے تعزیت کی کہ اِنَّ لِلَّهِ مَا خَزَ وَلَهُ مَا آتَا وَكُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. اور میں نے تو ہر دوسری جگہ پہ میت والے گھر میں جا کے لوگوں سے پوچھا ہے, کسی کو یہ دعا نہیں آتی. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کے بچے کے انتقال پہ یہ دعا پڑھی تھی کہ میری بیٹی غم نہ کر, انا للہ ہی ماں تھا, جو اللہ جو لے لیا وہ اللہ ہی کا تھا, انا للہ ہی ماں خزا, جو تھا اس نے لے لیا اور جو آج تیرے پاس ہے وہ بھی اس کا ہے, کیونکہ ہر چیز ہمیں ایک خاص وقت تک ملی ہے, بس صبر کر اور اس صبر پہ اجر مانگ. یقین کرے یہ دعا پڑھیں صبر آ جاتا ہے. ہم جھوٹے آنسو روت مار بہاتے, ٹسوے بہاتے, حال دحال کرتے, گھر والے سے ساری تفصیل بار بار سنتے, ہوا کیا, پھر کیسے ہوا, لیکن یہ دعا نہیں پڑھتے. یہ آج ہماری بے بسی ہے. ایک ہمیں میت کی دعا نہیں آتی. آپ کو پتہ کتنی پیاری دعا, اللہ مغفر لہو ورحم ہو وافی وافن ہو, طویل دعا ہے اور بھی ہیں. ابھی پچھلے دنوں کئی اموات ہوئیں نوسلو شہر میں, تو ہم جاتے تھے وہاں, لوگوں کو یہ دعا بھی نہیں آتی. لوگ بیٹھتے ہیں, چلو جی فاتح خانی کرو, چلو جی ہاتھ اٹھاؤ, اور فاتحہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. یہ مرنے والے کو اس سے کیا لگے, سیدھا راستہ تو زندوں کو چاہیے. دیکھیے نا جو سورت فاتحہ کا ترجمہ اس میں مردوں کی کہاں بات ہے, لیکن ایک رسم چل پڑی ہے نا فاتحہ خوانی کی, تو چلو جی دعا کرتے ہیں. چلو جی تین دفعہ کل ولہ پڑھی, سورۃ فاتحہ پڑھی, منہ پہ ہاتھ پھیرے, پھر باتیں شروع ہو گئے, پھر کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, چنے ہیں, فروٹ ہے, دکھا پی کے آتے ہیں. اور وہ دعا جو میت کو فائدہ دینی ہے, حدیث میں آتا ہے کہ مرنے والا ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیں تو وہ تڑپتی ہے, وہ دعا ہم اپنے مردوں کو دیتے ہی نہیں ہیں. ہم نے ایک جگہ ایسے پیپر چھپا کے لے گئے اور کچھ مرد حضرات تھے, تو انہوں نے ان کو دیے کہ آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پڑھے. نہیں 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 ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں, نہیں 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 ہم درود پڑھ رہے ہیں, اور باتیں ساری سیاست کی اور باتوں کی چل رہی تھیں, کلمے سے بڑی کوئی دعا نہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ بیچاری جو فوت ہوئی ہیں وہ ان کی اس دعا سے محروم رہ گئی ہیں. تو یاد رکھیے کہ جب کسی دوسرے پہ مصیبت آتی ہے تو ہمیں بھی اس سے موقع ملتا ہے کہ ان کے ساتھ شفقت کریں. پھر تیرواں فائدہ کیا ہے, معرفت قدر نعمت العافیت و شکر علیہا فإن النعم لا تعرف اقدارها الا بعد فقدها. بہت ہی پیاری بات ہے یہ کہ عافیت کی نعمت کی قدر و قیمت کو پہچاننا اور اس پہ شکر کرنا, کیونکہ بلا شبہ نعمتوں کی قدر و قیمت ان کے نہ ہونے پر ہی معلوم ہوتی ہے. سمجھ آ گئی ہے نا, مصیبت آتی ہے تو ہمیں پھر عام دنوں کی قدر آتی ہے. مطلب میں بیمار ہوں, میرا گلا خراب ہے, تو مجھے قدر کس کی آئی کہ روز نہیں خراب ہوتا. دیکھیں بیمار تم کبھی ہوتے ہیں نا, لیکن صحت مند ہم ہمیشہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. کبھی صدمہ, کوئی موت کی خبر چلے, اللہ تعالیٰ سب کو بچائے, مہینے میں ایک ہی دفعہ خبر آتی ہے نا کوئی, तो 29 दिन तो हम ठीक होते हैं। तो ये मतलब है कि जब मुश्किल आती है ना, फिर हमें एहसास होता है कि हम कितनी नेमतों में पल रहे हैं और हमारे लिए अल्लाह ताला ने खैर रखी हुई है। और नेमतों की कदर तो तभी होगी जब बंदे को उसके अजर मिल जाएंगे। फिर इसके बाद 14वां फ़ायदा क्या है, मा अद्दल्लाहु ताला अला हाज़िहिल फवाइद मिन सवाबिल आखिरती अला इख्तलाफी मरातिबिहा, यानी इख्तलाफ मरातिब के साथ, मरातिब कहते हैं मरतबे को, रैंक, डिफरेंट लेवल्स के साथ अल्लाह की जानिब से इन फवायद की बिना पर तैयार करदा सवाब आखरत। आप इसको आसान समझ लीजिए, आसान लफ्ज़ों में, कि मुसीबतों के ऊपर सब्र करने से हर बंदे को अपने सब्र के मुवाफिक आखिर में बदला मिलेगा। कुरान में ये आयतें हैं, आप पढ़ेंगे इसके हवाले भी, कि जब एक इंसान सब्र थोड़ा करेगा ना तो उसको छोटा दर्जा मिलेगा, ज़्यादा सब्र करेंगे ऊंचा ऊंचा, हो सकता है इंसान 100वें दर्जे पे पहुंचे। अहदीस इसमें बहुत प्यारी, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि बाज़ दफ़ा अल्लाह एक बंदे के लिए जन्नत में अच्छा आला मुकाम पर जगह लिख देता है। मसलन आप ऐसे सोचिए कि जैसे कोई कहता है कि इस शख्स को फर्स्ट क्लास में या बिजनेस क्लास में सफ़र करना है। अब वो नाम तो लिख दिया उसका फर्स्ट क्लास में, लेकिन पैसे उसके पास सिर्फ इकोनॉमी क्लास के हैं। अब क्या किया जाए? अल्लाह ताला वो जो बीच का डिफरेंस है ना, वो किसी तकलीफ में डाल के पूरा कर देते हैं। जो फरिश्तों इसके अमल तो 70वें दर्जे की जन्नत के थे, लेकिन इस पे एक मुसीबत डाली, 30 किस्म का सब्र करके ये 100वें दर्जे पर पहुँच गया। बात समझ गया? कभी कभी बच्चे के पास पैसे थोड़े होते हैं ना, लेना चाहता है, जमा कर रहा है कोई चीज़ लेने के लिए, तो माँ को बड़ा प्यार आता है, ले जाती है उसको खिलौना दिलाने के लिए, कहती है चलो तेरे पास कह दे। अब वो चुनिया ठनिया करके वो 15-20 रुपये निकलते हैं, माँ कहती है ये लो, ये बाकी 100 रुपया मैं डालती हूँ, मेरी तरफ से डाल दो। ये करता है अल्लाह ताला कि आपके मेरे लिए जन्नत में दर्जे बढ़ा देता है। फिर 15वां फ़ायदा क्या है, अलखामिसतु अशरता माफ़ी तैयहा मिनल फवायदिल खफ़ीयती, अल्लाह की जानिब से इसमें रखे हुए मख्फी फ़ायदे। वही जो बात शुरू में पिछले पॉइंट में आई है ना, कि आसान तक रहु शैयन वजह जल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, सूरत निसा आयत 19 है, यानी अल्लाह ने उसमें कुछ फ़वायद छुपा के रखे होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। फिर 16वां फ़ायदा क्या है, इन्नल मसाइब व शदाइदा तमनाउ मिनल अशर मिनल अशरी वल बतरी वल फ़ख्री वल खुयलाई व तकब्बुरी व तखय्युरी। अब आप सिर्फ इतने लफ्ज़ों से समझ गए होंगे कि ये फ़ायदा तो हमने कभी मुसीबतों का सोचा नहीं है। ज़रा पढ़िए, सुनिएगा उर्दू में, बिलाशुबा मुसीबतें, सख्तियाँ, नाज, नखरे, फ़ख्र, गरूर, तकब्बुर और शेही से बाज आती हैं, रखती हैं। समझ आई? ये सारे लफ्ज़ हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब शादी में होते हैं, मौत वाले घर में कभी ये शेखियाँ बिगाड़ी हमने? ये है, यानी खुशियों में हमारे अंदर फ़ख्र, गरूर, तकाबुल और दिखावा और रियाकारी आ जाती है, लेकिन मुसीबतों में वो नहीं होती। फिर इसके आगे लिखा है कि जैसे अगर नमरूद मुफलिस, बीमार, बहरा, अंधा होता तो इब्राहिम से इसके रब ताला के बारे में झगड़ा ना करता। तीसरे पारे में आते हैं ना, अल्लाह सी खाज इब्राहिम अफी रब्बहू, तो वही बात इधर की गई कि नमरूद का पेट भरा हुआ था तभी तो अल्लाह के खिलाफ बातें कर रहा था ना, अगर ये सब कुछ ना होता तो उसके अंदर ये नखरा नहीं होना था। और बादशाहत के गरूर ने उसे इस बात पर आमादा कर दिया कि अल्लाह के बारे में झगड़ा बयान कर झगड़ा कर रहा है, तो अल्लाह ताला ने वहाँ कहा था ना कि दी थी उसको अल्लाह ने बादशाहत, यही बात है। इसी तरह फिरौन के बारे में आता है कि वलविब तुलिया फिरौन भी मिसली जालिका लमा काला, कि अगर फिरौन भी आजमाया जाता तो ये जुमला कभी ना कहता कि अना रब्बुकुमुल आला, कहता था मैं बड़ा रब हूँ। तो क्या पता चला कि नेमतों में अकड़ते हैं। आज भी देखिए, कभी किसी खुशी के मौके पर लोगों का पहनना उठना चाल ही बदल जाती है, ऐसे लगता है कोई हमसा हो तो सामने आए। हम जैसा कौन, हम 30 मार खां, हम लाखों में एक, हजारों में एक, तो मुसीबतों में कम से कम ये खतरा तो नहीं होता, उसमें तो बंदा भीगी बिल्ली बन के बैठ जाता है। बहरहाल फिर इसी तरह से सूरत बरूज की आयतों में आता है, वमा नकमू मिन, नहीं सूरत बरूज नहीं है, सूरत तौबा आयत 74 में, वमा नकमू इल्ला अनगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, कि इनको और इससे अलावा और किसी बात के इंतकाम नहीं ले रहे कि अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से और इनके रसूल ने इन्हें दौलतमंद कर दिया। फिर इसी तरह से सूरत अलक की आयत 6-7, इन्ना लिल इंसानी लयतगा अर्रअखुस्तगना, कि इंसान देखो आपे से बाहर हो जाता है और खुद को बड़ा दौलतमंद समझता है। वो एक बड़ा छोरा सा लफ्ज है हमारे कल्चर में, नौ दौलतिया, सुना हुआ? नौ दौलतिया क्या होते हैं? थोड़ी सी दौलत आती है उसकी शोखियां बिगाड़ने लगते हैं, यही है इस आयत में, कि थोड़ा सा माल मिलता है तो अपने आप को पता नहीं वो फन्ने हाँ समझने लगता है। और क्या कहते हैं इसके ऊपर, कोई मुहावरे याद है आपको? यानी आप देखिए कि आज हमारे कल्चर में भी कई लोगों की चाल ही बदल जाती है पीछे, वो जैसे वो तो नाम बदल जाते हैं, किसी ने कहा पाकिस्तान में था तो भज्जा था, बाहर आ गए तो परवेज साहब बन गए। तो अब ये भज्जा साहब और परवेज साहब में फर्क किसका है, कि वो जो रुपए थे वो क्रोन में बदल गए, पता नहीं जिस दिन अमेरिकन करेंसी में बदलेंगे या जिस दिन वो किसी यूके की करेंसी में बदलेंगे तो वो परवेज साहब के साथ कोई दो नाम और भी लग जाएंगे। और वो उर्दू पंजाबी में कहते हैं ना, जिस घर दाने उन्हें कमले भी सियाने। तो याद रखिए, दौलत बंदे के बहुत सारे ऐप छुपा लेती है। अल्लाह ताला मुश्किलात में डालकर इंसान की असलियत दिखा देता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस और भी हैं, सूरत शूरा आयत 27 है, सूरत हूद आयत 116 है, आप खुद पढ़िएगा, आपका दिल खुल जाएगा इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला जब बंदे को मुश्किलात में डालते हैं तो उसमें उसके ईमान का ज़्यादा इम्तिहान होता है इसकी निस्बत कि वो खुशियों में हो। और कितनी सिक्योरिटी है ना, अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे, अपने आप को हम अलग रखें। फिर इसके बाद 17वां फ़ायदा पेज 267 पे अगर आप देख रहे हैं, क्या है? अर रिदा अल मुजिबू ली रिदवान अल्लाह ताला, यानी मुसीबतों पर अल्लाह की खुशनुदी को वाजिब करने वाली रजामंदी। यानी जब हम पे मुश्किल आती है ना तो वो हमें अल्लाह की रज़ा हासिल करवा देती है। आप देखिए ना, बच्चा जब माँ की डांट पे चुप करके बैठ जाता है बल्कि और उसके साथ लिपटता है तो माँ को प्यार भी तो आता है ना। आम हालात में हमें ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा होता, लेकिन जब हम मुश्किलात में सब्र करते हैं, अल्लाह की खुशनूदी को वाजिब करने वाली रजामंदी इंसान पर नाजिल होती है तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जाते हैं। हमारे पास एक मौका मिल जाता है, आप ये कह लीजिए कि हमें एक मौका मिल जाता है इस बात का कि हम अल्लाह ताला से राजी हो जाएं। तो अब देखिए ये 17 छुपे हुए फायदे, एक पॉइंट में हमने 17 पॉइंट पढ़े। आप में से कोई बच्ची अगर हेल्प करे, आप इसका माइंड मैप बनाए, ये पूरी बुक जो कुछ हम पढ़े ना इसका माइंड मैप मैं बनवा सकती हूँ, कोई मुझे अगर मिल के बात करे, आप पावर पॉइंट पे ये पॉइंट फिर पॉइंट में पॉइंट, जैसे वो तावीज़ नहीं लोग बनाते, तो मेरे लिए हम इसके तावीज़ बना के बांटना शुरू कर देते हैं, गले में डाल लें तो ये इससे फ़ायदा, ये इसके, लेकिन वो एक खुलासा होगा इंशाल्लाह। मैं इस पूरे आज हमने इस दफ़ा तो एक पूरे कोर्स में पढ़े हैं ना, लेकिन इन सारी बातों को एक लेक्चर में भी सम अप करूँगी, ताकि कम अज़ कम ये इतने रोज़ सुनने से अगर 1 घंटे का एक लेक्चर सुने तो ये टॉपिक पूरा कवर हो जाए। तो 6 पढ़ लिए, ज़रा दोहरा दें, लंबे हो गए। पहला क्या था? मुसीबत तो आनी ही आनी है हतमी तौर पे। दूसरा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन, हम सब अल्लाह के उसकी तरफ लौटेंगे। तीसरा जी, बोलिए जल्दी से, आपकी किताबें आपसे ज्यादा समझदार हैं, हैं? तकदीर पर राजी चौथा था, लेकिन ठीक है ये भी हो गया। नेक्स्ट, अल्लाह की तरफ रुजू का मौका। फिर मुसीबत में खैर होती है। और अब हमने पढ़ा था छठा, कि मुसीबत में छुपे हुए 17 फायदे पढ़े हैं। अब हम 7वां पॉइंट, ये किस चीज़ का पॉइंट है 7वां? मुसीबतों के आने के बाद, यानी मुसीबत आ चुकी है तो क्या करें? तो लिखिएगा, हर मुसीबत पर मिलने वाले अजर और सवाब को पेशे नज़र रखना। इनडायरेक्टली तो इसका मतलब पीछे आ गया, लेकिन ये एक अलग फ़ायदा भी है कि पीछे तो हमने पढ़ा था छुपे हुए फ़ायदे, उसके अंदर ये पॉइंट आया है, लेकिन वो एक साइड पॉइंट था। लेकिन अगर ऑन दी होल आप देखिए तो मुसीबत पर जो जर सवाब आता है उसको सामने रखिए, वही बात आ गई ना कि इसमें मेरे लिए खैर है बहुत सारी। फिर इसके 5 मुख्तलिफ दलाइल हैं इस बुक के अंदर, अगर आप पढ़ना चाहें कि मुसीबतों पे अजर मिलता है, कैसे मिलता है। पहली दलील इमाम बुखारी ने हजरत आयशा से नकल की है, रिवायत है बड़ी प्यारी, मा मिन मुसीबतें तुसीबुल मुस्लिम इल्ला कफर अल्लाह बिहा अनहु हत्ता शौकत युशाकुहा, मुसलमान को कोई मुसीबत नहीं पहुंचती मगर अल्लाह ताला उसकी वजह से इसके गुनाहों को इससे दूर कर देते हैं, यहां तक के चुभे हुए कांटे की वजह से भी। यानी आपके हाथ में, आपकी उंगली में एक हल्का सा कांटा चुभता है ना, इसके बदले भी गुनाह माफ हो जाता है, दर्जा मिल जाता है। कितनी बड़ी बात है जो अल्लाह ने हमारे लिए रखी। फिर दूसरी बात सही मुस्लिम की रिवायत में आती है, कोई मुसलमान ऐसा नहीं कि इसे कोई कांटा चुभे या इससे छोटी अजियत पहुंचे, मगर इसके लिए एक सबब दर्जा और इसकी एक खता बढ़ा माफ़ कर दी जाती है। यानी दर्जे भी बुलंद होते हैं और ख़ताएँ भी माफ़ होती हैं। फिर एक और रिवायत लिखी हुई, अगर आप सबसे नीचे देखें, तबरानी की है, किसी मोमिन को दुख देने वाली कोई बात नहीं पहुंचती, मगर अल्लाह ताला इस बिना पर इससे एक खता दूर करते और इसकी एक नेकी देते और इसका दर्जा बुलंद कर देते हैं। तो पहला फ़ायदा क्या हुआ कि यानी जब मुसीबत आए तो ये सोच लीजिए कि उसमें अजर है। और अजर की पहली किस्म क्या पड़ी कि कांटा ही क्यों ना चुभ जाए। अब देखिए, कांटा चुभे तो ज़्यादा दुख होता है या दिल दुखे तो ज़्यादा दुख होता है? कोई गाली दे तो ज्यादा दिल दुख होता है या कांटा चुभने से? हमारे यहाँ कहते हैं कि तलवार का जख्म भर जाता है, जुबान का नहीं भरता। तो आज के बाद किसी की बात से आपका दिल दुखे ना, इस हदीस को सुने, पता नहीं मेरे कितने गुना माफ हैं। फिर अपने गुना याद करें, अच्छा वो भी माफ हो गया, अल्लाह वो भी कर दे, वो भी कर दे, आपको भूल ही जाएगा आपका दिल किसने दुखाया। बल्कि आप खुश होंगे जब जरा गुनाहों का बोझ हुआ, आप कहेंगे कोई कड़वी बात करें ना, जरा मेरे गुनाह माफ हो। आप खुदा के लिए जाके ये कहना ना शुरू हो जाए और नई लड़ाई डाल लें अपने लिए, है वो पूरी बात समझ के जाया करें, पता चले घर में कोई और ही मसले खड़े किए हुए हैं, तो वो पता चले कि उनको कि अच्छा जी सारी मुसीबतें तुम पे मेरी वजह से आती हैं, तो फिर मैं ही तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो बहरहाल देखिए, हिकमत के साथ इल्म को जज्ब किया करें, अपने घर वालों का जीना धोबर ना करें, प्यार से मोहब्बत से इस्लाह की खातिर अच्छे तरीके से काम करें, आप भी खुश रहें दूसरे भी खुश रहें, इंसानों से प्यार करना सीखें। ये मैं आपको एक ओवरऑल एक जनरल असूल ज़िंदगी का दे रही हूँ, इंसानों से प्यार करें। हम इंसानों से मोहब्बत नहीं करते, खिंचे रहते हैं, तने रहते हैं, हालांकि हमें इंसान ही अच्छे लगते हैं। आपको शेरों के किसी जंगले में छोड़ दिया जाए, आप कभी खुश नहीं होंगी। कहीं आपके साथ घोड़े हों या सांप और बिच्छू, आप खुश नहीं रहेंगे। हमें खुशी फिर भी इंसानों से ही होगी। तो इंसान मुख्तलिफ होते हैं, बस आप उनकी खैर से फ़ायदा उठाइए क्योंकि वो अल्लाह के बंदे हैं। तो बहरहाल पहली चीज़ क्लियर हो गई कि कांटा चुभे उस पर भी तकलीफ है। दूसरी दलील देखिए, इमाम बुखारी और मुस्लिम, अबू सईद और अबू हुरैरा से है, फरमाए मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हज़निन वला अज़न वला गम्मिन हत्ता शौकत युशाकुहा इल्ला कफ़रल्लाहु बिहा मिन खताया। मुसलमान को कोई थकावट, थकन होती है इस वक्त, है कौन कौन थका हुआ आप में से? मेरा लिए जो थके होंगे वो आई नहीं होंगे, वो थकावट में है। हम कहते हैं रात शादी में इतना थक गए थे, आने का मौका ही नहीं मिला, क्या करें। तो बहरहाल जो भी खैर के कामों की थकन है, याद रखिए गुनाहों की थकन की बात नहीं करें। लंबी फ्लाइट में से निकल के आते हैं, यहाँ से उमरा करें, हज करें, थकन होती है ना? आप माँ को मिलने पाकिस्तान जा रहे हैं, थकन होगी ना? बस उसको जिद में ले कि कोई थकावट, किसी किस्म की बीमारी, कोई भी हम हुजन, अजियत और गम नहीं पहुँचता, यहाँ तक कि चुभे हुए चुभने वाला कांटा, मगर अल्लाह ताला इसके सबब इसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी बीमारियों पे सब्र करें। फिर अगली हदीस में जो मुस्लिम में जाबिर से है, एक हदीस है कि एक सहाबिया को बुखार हो गया था, तो उन्होंने कहा, सुनिएगा बड़ी प्यारी रिवायत है, क्योंकि हम में से अक्सर लोगों को जब बुखार होता है तो हम कुछ उल्टे सीधे जुमले बोलते हैं, सुन लीजिए इस हदीस को। बिला शुबा अल्लाह के नबी उम्मुल साहिब या उम्मुल मसीब, यानी नाम का इख्तलाफ है, सहाबिया थी, उनके घर तशरीफ लाए, फरमाए माला की माँ उम्म साहिबी, ए उम्म साहिब या उम्म मुसैब, आपको क्या हुआ है, आप तो कांप रही हैं। कहने लगी हुम्मा, हुम्मा कहते हैं बुखार को, मुझे बुखार हो गया। साथ ही बद्दुआ दे के कहती है ला बारक अल्लाह फीहा, अल्लाह इसमें बरकत ना डाले, यानी बुखार होने को बुरा कहा उन्होंने। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तो सब भी उलहुमया, बुखार को बुरा भला ना कहो, क्योंकि बिलाशुबा वो तो इंसानों की खताओं को इस तरह ले जाता है जैसे भट्टी लोहे की खबासत यानी जंग को दूर करती है। तो आज सीखे जाइए बुखार को बुरा ना के, बुखार की गर्मी जहन्नुम की गर्मी को कम करती है और हमारे गुनाहों को जला देती है। फिर इसी तरह अगली दलील है बुखारी की, है हज़रत अबू हुरैरा से, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसब मिन्हु, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करते हैं उसको मुसीबत में मुबतला करते हैं। ये कैसा अल्लाह का असूल है? देखिए हम दुनिया में, यानी अपने तौर पर समझने के लिए देखिए कि दुनिया में हम किसको काम कहते हैं, जिस पे मान होता, हम किन के घर जाके रहते हैं जिनसे मोहब्बत होती है, हम किन को कहते हैं चले जी हमें कहीं ले जाएं, जो अपने होते हैं। तो यही बात है इधर, अल्लाह जब हमें किसी मुश्किल में डालता है तो उसका मतलब क्या होता है कि अल्लाह को हमसे प्यार है, हम अल्लाह ताला से मोहब्बत को महसूस करें तो उसमें हमें बहुत सारी खैर मिल जाएगी। फिर इसी तरह से आप देखिए इसकी बाकी हदीस आप ख़ुद पढ़िएगा, क्योंकि थोड़े थोड़े लफ्ज़ों के फ़र्क से बहुत खूबसूरत हदीसें हैं कि तकलीफ़ों में हमें अजर कैसे मिल जाता है। कि एक कौल लिखा हुआ है इब्ने मसूद का कि दर्द की वजह से सवाब नहीं लिखा जाता, बल्कि इसके सबब इस सिर्फ खताएं दूर की जाती हैं। यानी जो हमें तकलीफ़ भी होती है ना, गले में दर्द है, कान में दर्द है, हाथ में दर्द है, तो उस पर अल्लाह के हुक्म से हमें तकलीफ़ होगी। और वो हदीस जो मैंने अभी आपको बताई वो पेज 274 पे बिल्कुल शुरू में लिखी हुई है कि बंदा अल्लाह के यहाँ एक बंदे का अल्लाह के यहाँ एक मुकाम होता है, वो अमल के साथ उस तक नहीं पहुँच पा रहा होता, तो अल्लाह ताला उसकी नापसंदीदा चीज़ के साथ आजमाइश में डालते हैं यहाँ तक कि उसे उस मुकाम पर पहुँचा देते हैं। ये जो भी मैंने आपको इकोनॉमी और फर्स्ट क्लास की मिसाल दी थी ना, उसी की बात की जा रही है। तो खुलासा क्या निकला इधर की बात का कि इंसान को मुश्किल में डालकर अल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद करते हैं, उसके गुनाहों से माफ़ करते हैं। आठवां काम जो मैंने आपने मुसीबतों के आने के बाद करना है, सब्र के साथ अल्लाह से मदद मांगे, वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाम। सब्र के साथ मदद मांगने का मौका मिल जाता है। अगर तकलीफ ना आए, मुश्किल ना आए, तो हम ये काम कर ही नहीं सकते। आप देख रहे हैं कि तकलीफों के जमन में डिफरेंट एंगल से सबसे ज्यादा बात किस पे हो रही है, सब्र पे हो रही है। तो जो लोग सब्र वाले होते हैं ना, उनकी जिंदगी में तकलीफें अगर आ भी जाए ना, तो अल्लाह ताला उनको निकाल देता है। तो क्या पता चला, सब्र करना है। इसके दलाइल बहुत सारे इस बुक में भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। मसलन सूरत आल इमरान आयत 146, वल्लाहु युहिब्बु साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों को पसंद करते हैं। फिर इसी तरह से सूरत बकरा 155 से 157 के वबशिर साबिरीन, सब्र वालों को खुशखबरियां दे दीजिए कि जब उनको मुसीबत पहुंचती है तो वो अल्लाह ताला के तरफ रुजू करते हैं और कहते हैं कि हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटेंगे। ये आयत वाकई एक एक चीज़ इंसान को बहुत ज़्यादा अल्लाह का कुर्ब देती है। फिर इसी तरह से सूरत सजदा आयत 24 में आता है, वजाल न मिन हम आयमत यहदू नबी अमरी ना लम्मा सबरू। ये भी एक बड़ी खूबी है सबर की, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ने सबर करने वालों को क्या कहा कि वजालना मिनहुम, हमने उनमें ऐसे आयमा बना दिए जो हमारे हुक्म से हिदायत देते थे। यानी सब्र करने वाले को अल्लाह ताला लीडरशिप पे मुकाम पे फाइज कर देता है, उसको इमाम बना देता है। सब्र के बगैर लीडरशिप नहीं हो सकती। पहले उस्ताद सब्र करता है, फिर शागिर्द सीखेगा। पहले माँ सब्र करेगी, फिर बच्चा सब्र करेगा। आप देखिए जो माएँ चीखती रहती हैं, बोलती रहती हैं ना, उनके बच्चों को भी बोलने की आदत हो जाती है। और जो माएँ बड़ी कामगो और बड़े प्यार से और नरमी से बात करती हैं, उनके बच्चे भी आहिस्ता बात करते हैं। वजह क्या है कि माँ ने बच्चे को अपने रवैये से सब्र सिखाया। तो लीडरशिप या बड़े होने में सब्र का बहुत अहम है। कुरान पाक में आपको तो सब्र का कितनी दफ़ा जिक्र है, कमो बेश 70 बार कुरान में सब्र का जिक्र है, और अल्लाह ताला ने हर जगह सब्र वालों की तारीफ़ें फरमाई हैं। फिर अगले पेज पे आप इसकी बहुत सारी आयतें हदीसें पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको दिखेगा कि ये समझे कि एक पूरा खुलासा आपके पास सब्र का है। फिर इन्होंने 5 वाक़यात बयान किए हैं सब्र के अमली नमूने। एक वाक़या तो वही है जो कि कल आपको सुनाया था, अबू तलहा और उम्मे सुलैम का। बच्चा फौत हो चुका है और माँ घर में उसको रख के बैठी हुई और शौहर को बताया नहीं, याद है? वो इधर आपको बड़ी डिटेल से मिलेगा और उसमें कुछ नई बातें भी आप पढ़ेंगे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये खैर जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रखी, ये जो बच्चा पैदा होगा इसमें बहुत खैर होगी। आपने फरमाया जब वो बच्चा पैदा हो तो उसको लेकर आओ। जब वो लेकर आई तो फिर आपने उनको दुआ दी, और आपको पता है कि वो जब दुनिया से गए तो अल्लाह ताला ने उनकी नस्ल में से कितनी खैर रखी हुई थी, ये सुन के देखिएगा। जब सुबह हुई, जब सुबह हुई तो मैं इसे उठाए रसूलुल्लाह की तरफ रवाना हुआ। यानी हजरत अनस के छोटे भाई थे ना, उम्मे सुलैम के ही बेटे थे अनस भी और ये भी। तो बड़ा भाई जो उस बच्चे को लेकर नबी सल्लम के पास गया, मेरा और आप नबी सल्लम का आमना सामना हुआ, जबकि उनके पास जानवरों को दागने वाला आला था। मुझे देखते ही फरमाया शायद उम्मे सुलैम ने बच्चे को जन्म दिया। मैंने कहा जी हाँ। आपने वो आला वहां रख दिया, फिर क्या किया सुनिएगा। न्यू बॉर्न बेबी के साथ अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं। हजरत अनस कहते हैं मैं इस बच्चे को लाया और इसे अल्लाह के नबी की गोद में रख दिया। जी ठीक है, मुझे पता। अल्लाह के नबी सल्लम की गोद में रख दिया। आपने मदीना तय्यबा की अजवा खजूर, अब आप में से किसी का बेबी होने वाला है तो ये बातें गौर से सुने। न्यूबॉर्न बेबी को अजवा खजूर एक मंगवाई, उसको अपने मुंह में चबाया, जब चबा के उसको नरम किया तो उसमें लुआब लग गया, वो नरम हो गई तो उसको बच्चे के मुंह में डाल दिया। क्या कहते हैं हम इसको आज? घुट्टी देना, तहनीक कहते हैं इसको अरबी में। बच्चे ने उसको चाटना शुरू किया। फिर आपने कहा अंसारियों की खजूर के लिए मोहब्बत देखो, यानी इनका बच्चा भी खजूर चाट रहा है। अच्छा, यहाँ हॉस्पिटल में खाने देंगे, बच्चे को खिलाने देंगे, इसलिए डॉक्टरों से छुपा के कीजिएगा अगर ये काम किया आपने। बहरहाल, फिर आपने उस बच्चे के चेहरे पे हाथ फेरा और उसका नाम अब्दुल्ला रखा। बुखारी में आता है, फिर वो एक सहाबी कहते हैं कि मैंने इन दोनों यानी अबू तलहा और उम्मे सुलैम के लिए अब्दुल्ला की औलाद में से 9 बच्चे देखे जो कुरान के कारी थे। यानी वो जो बच्चा माँ के सब्र के बाद पैदा हुआ और अल्लाह के नबी ने उसको इतना प्रोटोकॉल दिया, उस बच्चे की नस्ल में से फिर 9 कारी कुरान पैदा हुए। तो सब्र का अजर दुनिया में मौजूद है, अगर आप और मैं फिक्र करें तो इसकी बहुत सारी ज़रूरत है। दूसरा वाक्य उम्मे सलमा का है, आप सबने बहुत दफा सुना होगा। ये जो सबर के लेक्चर्स आपको रेकमेंड कर रही हूँ, मैंने उसमें कई जगह पूरा पूरा वाक्य कोट किया है कि अबू सलमा अल्लाह के नबी के सहाबी थे, उन्होंने आपकी ज़ुबान मुबारक से एक दुआ सीखी कि जब किसी मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचे तो वो ये दुआ पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफली खैरम मिनहा। उम्मे सलमा ने अपने शौहर से सुनकर ये दुआ याद कर ली। अल्लाह को हुक्म देखिए, कुछ दिन के बाद अबू सलमा का इंतकाल हो गया और उम्मे सलमा यही दुआ पढ़ रही हैं इद्दत के दौरान, और दिल में क्या सोचती हैं, इतने प्यारे शौहर के बाद अब मुझे और कौन सा मिलेगा। क्योंकि आपको पता है अबू सलमा जो थे ना अव्वल मुहाजिर थे, इस कपल ने हिजरत की थी मदीना में सबसे पहले। तो कहने लगी कि इतना अच्छा तो शौहर मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन अल्लाह के वादों पर यकीन था और वही हुआ। इधर इद्दत पूरी हुई और अल्लाह के नबी ने दरवाज़ा खटकाया और कहा कि उम्मे सलमा, अल्लाह ताला ने मुझे आपसे निकाह का हुक्म दिया। तो उम्मे सलमा को ज़रा सी घबराहट हुई, अल्लाह के नबी आपसे कैसे मेरा होगा। कहा मैं तो बड़ी उम्र की हूँ। फरमाया मैं भी कोई उम्र का कम नहीं हूँ। कहा मेरे तो बच्चे हैं। कहा आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं। कहने की अल्लाह के नबी मेरे मिजाज में गुस्सा है, शौहर होने के नाते शायद मैं किसी वक्त आपको कोई ऐसी बात कह दूँ जो नबूवत के मुकाम से मुझे गुनाहगार कर दे कि मैंने एक नबी के आगे ये कहा। का फिक्र नहीं करो, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो तुम्हारा गुस्सा कम करे। और इस तरह वो उम्मे सलमा सहाबियात से निकलकर उम्महातुल मोमिनीन में आ गई। सब्र जाया नहीं होता, आज भी किसी औरत का शौहर फौत होता है, पूरे यकीन से मांगती है, अल्लाह ताला उसके लिए इसको आसान करेगा। तीसरा वाक्य उम्मे अतिया का है, इनका बेटा फौत हुआ। सुनिएगा ये बातें, देखिए पल्ले से बांधे, जाने की जल्दी में या घबराहट में इन चीज़ों को छोड़िए नहीं। बच्चे की वफात के 3रे दिन उन्होंने सुफरा, एक जर्द रंग की खुशबू होती है, वो मंगाई, इसको इस्तेमाल किया और कहने लगी हमें रोका गया कि हम अपने खावन के सिवा किसी पर 3 दिन से ज़्यादा सोख करें। हमारा कितने दिन चलता है? 3 दिन, फिर 10 दिन, फिर पहली जुमेरात, फिर दूसरी जुमेरात, फिर 40वां, फिर बरसी। जी हम तो और किसी बहू बेटी को जरा कोई पहना ओढ़ा देख लें, कहते हैं देखो सास के मरने की खुशी कर रही है, अभी 1 महीना हुआ इसकी सास को मरे हुए। 3रे दिन, ये अब यह 4 वाक्यात आप देखेंगे, बेटे के मरने पे 3रे दिन पे करती हैं। फिर उम्मे हबीबा कहती हैं कि जैनब बिनते अबी सलमा की रिवायत है कि अल्लाह के नबी की बीवी उम्मे हबीबा के पास गई, जब उनके बाप कौन थे, अबू सुफियान नहीं, वो हफ्सा थी उमर की बेटी, उम्मे हबीबा अबू सुफियान की बेटी थी, उनकी डेथ हुई और आपको पता है कि नबी सल्लम की वफ़ात पहले हो चुकी है। उम्मे हबीबा ने खुशबू मंगवाई जिसमें खलूक, खुशबू की जर्दी या किसी चीज़ की मिलावट थी, फिर एक लौंडी ने उनको वो खुशबू लगाई, फिर उन्होंने खुद अपने रुखसारों पर यानी वो रंग लगाया उसका और कहने लगी वल्लाही अल्लाह की कसम मुझे खुशबू की ज़रूरत नहीं है। यानी बाप चले गए, कोई खुशी का मौका नहीं है, शौहर पहले से नहीं है, बच्चे हैं नहीं है, जो भी है, तो कहने लगी मगर मैंने अल्लाह के नबी से सुना है कि जो औरत अल्लाह और आखरत पर ईमान रखे उसके लिए जायज़ नहीं है कि 3 दिन से ज़्यादा किसी मैयत पर सोग करे, सिवाय बीवी के जो अपने शौहर पर 4 महीने 10 दिन करेगी। और अगला वाक्य ज़ैनब बिनते जहश के, उनके भाई फौत हो गए, सेम यही काम उन्होंने 3रे दिन किया, खुशबू मंगवाई और यही बात कही कि मैंने अल्लाह के नबी के इस हुक्म पर अमल किया है कि मुझे अपने शोक को ख़त्म करना है। तो ये हमें अपने कल्चर से निकालनी है चीज़ें। यकीन करें एक तो बंदा मर जाता है, जो घर वाले हैं वो हमारे ये खिदमतें कर करके 2-2 साल तक उनके घरों के अंदर यकीन करें कर्जदार हो जाते हैं लोग, किसी ने कहा कि एक बूढ़ी औरत थी, गरीब औरत थी, पाकिस्तान की बात है, तो उसका शौहर फौत हो गया, 40वें का मौका आया, तो उसने आके मौलवी साहब से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है 40वां करने के, तो मैं क्या करूं। उन्होंने कहा जो मर्जी करो, तुम नहीं चाहती तुम्हारा शौहर मरे। कहा कुछ भी नहीं, कहने की वहां एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, कहा उसको बेचो, उसके पैसों का खाना खिलाओ, बैठ तुम्हारा शौहर बख्शा जाएगा। कुरान क्या कहता है कि यतीमों का माल ना खाओ, ला ताकुल अमवाल अन्नास बैनकुम बिल बातिल, बातिल से माल ना खाओ। तो बहरहाल सारी बात का खुलासा क्या है कि ये चीज़ अल्लाह के हुक्म से, और याद रखिए कि सब्र कोशिश से आता है, कोशिश भी करनी चाहिए और मुसीबत के आते ही सब्र करें, क्योंकि इन्नमा सब्रु इंदा सदमतिल ऊला, सब्र जो है वो मुसीबत के बिल्कुल पहली चोट पे होता है, अदरवाइज बाद में तो सब्र आता है। फिर इसी तरह जजा फजा नहीं करनी चाहिए कि शुरू में रो धो लें, फिर जब गला ख़राब ही हो गया तो फिर तो ये सब कुछ ख़त्म होगा। तो यहाँ पे हमारे 8 पॉइंट पूरे हुए हैं कि मुसीबतों के आने के बाद हम ये सारा काम कैसे करें। ये दुआ कीजिए कि अल्लाह सुबहाना ताला मेरे आपके लिए कोई ऐसी आजमाइश रखे ना, और अगर हम पे कोई आजमाइश कोई तकलीफ़ आ जाती है तो फिर अल्लाह ताला उसमें हमें पूरा उतरने वाला बना दे और हमें ये तौफीक दे कि हम सब्र का दामन ना छोड़ें। यकीन करें, आप सच बताएं, ये बुक शुरू की थी जब, तो हमारी सोच क्या थी कि मुसीबतें परेशानियां और पता नहीं, यानी एक ज़रा नेगेटिव टॉपिक सा लगता था। मैं खुद सोच रही थी कि हम पता नहीं इतने दिन तक मुसीबतों की बातें करेंगे, लेकिन पढ़ाने से, यानी माशाल्लाह हमारी 2/3 बुक के करीब हो गई है, मेरा तो फिक्र उतर गया, परेशानी उतर गई। जैसे किसी चीज़ को अंदर से खोल के देख लें तो उसके अंदर का जो खौफ और एक हवा होता है वो ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह इल्म के साथ यही होगा आपके मेरे साथ कि हमारा खौफ दूर होगा, बल्कि हमें काम उसका तरीका करना आएगा। तो क्या सीख रहे हैं हम मुसीबत मैनेजमेंट सीख रहे हैं, परेशानी मैनेजमेंट सीख रहे हैं, दुखों को मैनेज करना सीख रहे हैं, क्योंकि हम बदल नहीं सकते लेकिन हम एक्सेप्ट तो कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बरकत दे। आज आप जानते हैं कि जुमातुल मुबारक है और हमें मस्जिद को 45 तक ख़त्म करना है, खाली करना है। आप लोग खामोशी से जल्दी से अपनी चीज़ें लेके इधर से बाहर चलें ताकि जो ब्रदर्स बाहर से आना चाहते हैं वो आ जाएँ। और एक बात है कि कल भी होगा जी, 1 मिनट आंटी जी, 1 मिनट जी, कौन सा सवाल कल जो किया था? जी जी बिल्कुल पढ़ना जी। बिल्कुल इतराज कौन करता है?
अक्सर ऐसा मैं देखने में मुझे आता है।
देखिए, मैं आपने सवाल पूछा, जज़ाकअल्लाह खैर, मैं
जवाब देंगे आपको,
कल जवाब दूं,
पता क्यों
कल टाइम नहीं होना,
नहीं,
अभी ले लें,
नहीं अभी इन्होंने सफाई करनी है, आदमी बाहर है,
ठीक है जी, आपको मैं अकेले में भी दे सकती हूँ, मैं असल में आपको इस पे एक पूरा रिकमेंड करूंगी, तो फिर एक दिन और बढ़ा लें कोर्स का।
आप
चलिए ठीक है,
वो कह रहे थे आप कल जा रही हैं,
ठीक है जी, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। आप ये लाइट्स जरा थोड़ी देर बंद करें और खामोशी से निकलें ताकि मस्जिद की एक्स्ट्रा लाइट्स भी इस्तेमाल ना हो।
क्या बात